हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय दो श्लोक संख्या 27-34। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति।
आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेनया कल्पिता श्रीमद् भागवतं प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थोमः श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न परा वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबर दरुणबिंबफल धरोष्ठात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात् हरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने करारविंदे न पदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवेऽपि बस्व मृत्युमेतदेव गोविंद दामो धर्माधवेति बर्हापीडं नटवरवपुकर्णियोकर्णिकार बिभ्राद्वा सह कनकपिशं वैजन्तीं च माल्यं रन्ध्रान् वेणुं अधरसुधया पूर्णयोगोपविन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् कीर्तकीर्ति अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिङ्घास्य यापा ययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धा त्रुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन छोर।
श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मूकं पुरुतु वाचालं पंगु लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधव श्रीचैतन्यईश्वरं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 3, जिसका शीर्षक है भगवान कृष्ण का सुमिरन। जब विदुर जी ने भगवान के विषय में पूछा तो उस समय उद्धव जी को अकस्मात कृष्ण का सारा जीवन स्मरण हो उठा, और यही एक शुद्ध भक्त का स्वभाव है। भगवान बताते हैं 10.9 में, मत चित्ता मत गतः प्राणा बोधयंतः परस्परम। आपको मेरे भक्त को पहचानना है तो जानते हो कैसे पहचानना? वो जिस समय भी मुंह से कुछ शब्द निकालेगा ना, तो मेरे विषय में कथयंतस्य माम नित्यम। नित्यम का मतलब होता है एक क्षण भी वो मेरे कथन से अपने आप को दूर नहीं करना चाहता। कथयंतस्य माम नित्यम। भक्त का स्वभाव है या तो भगवान के विषय में श्रवण करे या तो भगवान के विषय में बोलता रहे। भगवान के गुण नाम लीलाओं का संकीर्तन और भगवान के गुण नाम लीलाओं का श्रवण, यही एकमात्र बिजनेस है भक्त का। इसके अतिरिक्त और उसको कुछ करना आता ही नहीं है। इसलिए जब विदुर जी से भेंट हुई उद्धव जी की, तो भगवान की महिमा के विषय में, भगवान के सौंदर्य के विषय में, भगवान की करुणा के विषय में, भगवान की भक्त वत्सलता के विषय में वो बताते जा रहे हैं कि ऐसे भगवान जो कि स्तनों पर विष लगाई हुई पूतना को भी माता की गति प्रदान करते हैं, इनसे कम वा दयालुम शरणम प्रपद्य। क्या इनसे कोई दयालु होगा जिसके शरण में जाकर जीव आनंदित हो सके? और वो सारे जितने भी शत्रु खड़े थे सामने, उनको भी कृष्ण ने अपना लोक प्रदान किया, अंतिम समय में अपना दर्शन, अपना मुखमंडल का, जो कि इतना सुंदर है, उस मुखमंडल को निहारते हुए उनकी मृत्यु हुई। तो कितनी करुणा है कृष्ण के अंदर कि वो भक्तों के ऊपर तो दया करते हैं, परंतु जो उनके ऊपर जो उनसे शत्रुता रखते हैं उनके ऊपर भी दया करते हैं। परंतु भक्त सदैव अपने आप को हीन समझते हैं, इसलिए उद्धव जी कहते हैं वो तो भगवान को देखते देखते मर गए और हम यहीं रह गए। हम कितने बदनसीब हैं कि हम कृष्ण का विरह यहाँ पर झेलते हुए भी जिंदा हैं और बहुत दुखी होकर उसके उपरांत भगवान के आविर्भाव की कथा प्रारंभ करते हैं। वे कहते हैं ब्रह्मा ने जब बहुत याचना की तब कृष्ण भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में बंदी ग्रह में वसुदेव और देवकी के यहाँ पर प्रकट हुए, और उसके उपरांत जब पिता ने सोचा कि कहीं कंस इनको हानि ना पहुंचा दे, तो फिर वो नंद महाराज के पास उनको लेके गए और वहाँ पर 11 वर्ष तक भगवान ने अपनी बाल लीलाएं की। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान को किसी का भय नहीं है, परंतु ये भगवान की इच्छा है कि वो उनको अपनी पूजा स्तुति से इतना अच्छा नहीं लगता, उनको अपनी भक्ति करने वाले जो सारा दिन अर्चना करते रहते उनसे ज़्यादा। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा और शिव की स्तुतियों से भी अधिक ब्रज की गोपियाँ जब काली देखकर बुलाती हैं, अरे सारे कहाँ है चोर, और इस तरह से जब पुकारती हैं तो कृष्ण को अधिक अच्छा लगता है, अधिक आनंद आता है। वहीं से प्रारंभ करेंगे जहाँ से हमने कल छोड़ा था कि भगवान को तब अधिक आनंद प्राप्त होता है जब कोई व्यक्ति उन्हें अपने अधीनस्थ पुत्र के रूप में स्वीकार करता है। जैसे पिता के संरक्षण की आवश्यकता होती है, अपेक्षा उसके कि कोई उन्हें भगवान के स्वरूप में स्वीकार करे। वे सबों के पिता हैं और सबों की रक्षा करते हैं, किंतु जब उनका भक्त यह मान लेता है कि भगवान को भक्त की देखरेख में सुरक्षा प्राप्त करनी है, तो इससे उन्हें दिव्य हर्ष होता है। अतः जब कंस के भय से वसुदेव उन्हें वृंदावन ले गए तो भगवान को आनंद प्राप्त हुआ, अन्यथा उन्हें कंस से या अन्य किसी से कोई भय नहीं था। भगवान को अच्छा लगता है कि कोई उनकी फिक्र करे, कोई उनको प्रेम करे, कोई लाड़ करे, कोई दुलार करे। इसलिए वो गौलोक छोड़कर इस भौतिक जगत में आते हैं, क्योंकि गौलोक में ये सब नहीं होता। गौलोक में भगवान को कोई रस्सी से बांधता नहीं है, भगवान को कोई स्तन से दूध नहीं पिलाता है, और यूँ भगवान के साथ जो लीलाएं हैं वो तो केवल ब्रजमंडल में संभव है। और वो भाग्यशाली हैं जिन्होंने ब्रज भूमि में अवतार जन्म लिया है और भगवान के सुंदर सुंदर लीलाओं का आस्वादन वो कोई साधारण नहीं है। करोड़ों करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने वाले ऋषि मुनि आज गोपियाँ बनकर या ग्वाले बनकर भगवान के साथ इन सब मधुर लीलाओं का रसपान करने के लिए आते हैं। आगे उद्धव जी कहते हैं परितो वत्स पैर्वत्सांश चारयन व्यहरत विभु यमुनो पवने कुजत द्विज संकुलितांग्रीपे। परितो वत्स पैर्वत्सांश चारयन व्यवहरत विभु यमुनो पवने कुचत द्विज संकुलितांग्रीपे। परितो वत्स पैर्वत्सां, परितो अर्थात घिरे हुए रहते थे सदैव किससे, वत्स पैर अर्थात ग्वाल बालों से, वत्सान अर्थात बछड़ों से। वो परब्रह्म परमेश्वर जब पृथ्वी पर आए थे तो सदैव ग्वाल बालों से, बछरों से गिरे रहते। चारयन व्यहरत विभु, चारयन वो तो उन बछड़ों को चराने के लिए जाते थे, विहार का आनंद लेते थे। विभु वो सर्वशक्तिमान होते हुए भी ऐसे कार्य करते थे। हम सोच सकते हैं कि ये गौ के बछड़े क्या साधारण हो सकते हैं, जिनको चराते थे साक्षात परब्रह्म सर्वशक्तिमान भगवान उनकी सेवा करते थे। और यमुनो पवने, यमुनो अर्थात यमुना नदी, उपवने तट के बगीचे में कूजत शब्दायमान होते थे। और वहां पर क्या होता था, हर वक्त गुंजार, जैसे द्विज का मतलब होता है पक्षी, संकुलित अर्थात सघन, अड़घ्रपे अर्थात वृक्षों, अंग्रपे अर्थात वृक्षों में बहुत सारे सुंदर सुंदर पक्षियों की बहुत सुंदर सुंदर मीठी मीठी आवाज़ें शब्दायमान होती थी। और वहाँ पर भगवान अपने ग्वाल बाल मित्रों और गायों के बछड़ों के साथ आनंद विहार करते थे। अनुवाद देखिए, अपने बाल्यकाल में सर्वशक्तिमान भगवान ग्वाल बालों तथा बछड़ों से गिरे रहते थे। इस तरह वे यमुना नदी के किनारे तट पर सघन वृक्षों से आच्छादित तथा चहचहाते पक्षियों की ध्वनि से पूरी बगीचों में विहार करते थे। श्रील प्रभुपाद की जय। ये कितना सुंदर है कि श्रील प्रभुपाद जी एक एक श्लोक को कितना विस्तार से बताते हैं, ताकि हमारा जो हृदय है वो भगवान के चरणों में, भगवान की लीलाओं में वो इतना खो जाए कि हमें संसार की सुध न रहे। ये सब पता है ना सबको, ऐसा तो कुछ नहीं है भागवतम में जो हमसे छुपा हुआ हो, लेकिन बार बार इन भगवान के कार्यकलापों को श्रवण करने से, जब शुद्ध भक्त के मुख से जब हम ये सब श्रवण कर रहे हैं, तो उससे हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति आकर्षण और प्रेम उत्पन्न होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी जैसे महान शुद्ध वैष्णव के मुख से हम भगवान की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं, और वो लीलाएँ जो परम वैष्णव उद्धव जी विदुर जी को सुना रहे हैं, तो निस्संदेह ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारा कल्याण है इसमें, तो कि भगवान ने हमको ये अवसर प्रदान किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते, नंद महाराज कंस के भूमिधर थे, किंतु जाति से वैश्य होने के कारण उन्होंने हजारों गौवें पाल रखी थी। वैश्यों का कर्तव्य है कि गौओं को सुरक्षा प्रदान करें, जिस तरह क्षत्रियों को मनुष्यों को सुरक्षा प्रदान करनी होती है। चूंकि भगवान बालक थे, इसलिए उन्हें अन्य ग्वाल मित्रों के साथ बछड़ों को चराने का भार सौंप दिया गया था। ये ग्वाल बाल अपने पूर्व जन्म में महर्षि तथा योगी थे, और ऐसे अनेक पवित्र जन्मों के बाद उन्हें भगवान की संगति प्राप्त हुई थी, जिससे वे उनके साथ समान स्तर पर खेल सकते थे। ऐसे ग्वाल बालों ने यह जानने की कभी परवाह नहीं की कि कृष्ण कौन है, किंतु वे अत्यंत घनिष्ठ तथा प्रिय मित्र के रूप में उनके साथ खेलते थे। वे भगवान को इतना चाहते थे कि रात में भी वे यही सोचते थे कि कब भोर हो, और वे भगवान से मिलकर एक साथ गौवे चराने जंगल में जाएं। भगवान हमें प्रत्यक्ष उदाहरण देते हैं कि हम सब वैश्य हैं, और हमारा कर्तव्य है कि गौओं को सुरक्षा प्रदान करें। इसीलिए भगवान छोटे से हैं, और वो गौओं और बछड़ों की सुरक्षा करने के लिए, उनको चराने के लिए वो वृंदावन में जाते हैं। वो भगवान जो गौओं को लेके जाते हैं, और माता जी उनको बोलती हैं, कृष्ण तुम जूता पहन के जाओ, तो कृष्ण कहते हैं, मैया हम तो सेवक है ना, और हम तो गायों की सेवा करते हैं, वो हमारी स्वामिनी है, और हम अगर स्वामी जो है वो जूते नहीं पहनता तो हम तो सेवक है, हम कैसे पहन सकते हैं। तो उन गायों के कारण वो नंगे पांव चलते हैं, कभी पत्थर होते हैं, कंकर होते हैं, कांटे होते हैं, लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है कि हम गायों की रक्षा नहीं कर पाते। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि ये जो ग्वाल बाल हैं, वो अनेक अनेक जन्म शुद्ध पवित्र कार्य करके, पुण्य एकत्रित करके इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि वो भगवान के स्तर पर भगवान के साथ लीलाएं कर रहे हैं। उनको ये जानने की इच्छा नहीं होती थी कि कृष्ण परब्रह्म हैं। वो इतना प्रेम करते थे कृष्ण से कि वो रहना नहीं चाहते थे उनके बगैर। वो पूरा सुबह को भोर होती नहीं थी और वो आ जाते थे, और पूरा दिन भगवान के साथ उन यमुना के तट पर, कुंजों में, सघन वनों में पंछियों की मधुर मधुर शब्दायमान जो गूंजे हैं उनमें आनंद लूटते हुए, रात को जब वापस से शाम के समय संध्या के समय वापस आते थे, तो उनके लिए वो समय जब वो घर पे होते थे और सोते थे, वो भी गुजारना कठिन हो जाता था। वो सोचते थे कब सुबह हो, कब भोर हो, और हमें पुनः कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो। आगे कहते हैं श्री प्रभुपाद जी के, यमुना के किनारे के सारे जंगल सुंदर बगीचे थे, जो आम, कटहल, सेब, अमरूद, नारंगी, अंगूर, बेर, ताड़ फल के पेड़ों तथा अन्य कई पौधों और सुगंधित पुष्पों से भरे थे। चूंकि यह जंगल यमुना के तट पर था, अतएव स्वाभाविक है कि वहां पर बत्तख, सारस तथा वृक्षों की शाखाओं पर मोर होते। ये सारे वृक्ष तथा पक्षी एवं पशु पवित्र जीव थे, जो वृंदावन के दिव्य धाम में भगवान को एवं उनके नित्य संगी ग्वालों को आनंद प्रदान करने के लिए थे। तो जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, जो पवित्र जीव आत्माएं होती हैं, वो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें पशु बना दो, हमें पक्षी बना दो, हमें वृक्ष बना दो या पत्थर बना दो, परंतु जन्म देना है तो हमें वृंदावन में ही देना, ताकि आपकी ग्वाल बालों के साथ की हुई लीलाओं का हम दर्शन कर सकें और हम आपको आनंद प्रदान कर सकें। तो ये सब वृंदावन में जितने भी वृक्ष हैं, चाहे वो आम का हो, नारंगी का हो, कटहल का हो, अमरूद सेब, जो भी हो, वो सब कोई साधारण जीव है, साधारण जीव नहीं है, बहुत ही पवित्र पवित्र, जिन्होंने जन्मों जन्मों तक तपस्या की है, तब कहीं जाकर उनको वृंदावन में वृक्ष बनने का या पशु या पक्षी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान ने अपने संगियों के साथ छोटे शिशु की तरह खेलते हुए अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर तथा गर्दभासुर असुरों का वध किया। यद्यपि ये वृंदावन में एक बालक के रूप में प्रकट हुए थे, किंतु वास्तव में वे अग्नि की ढकी हुई लपटों के तुल्य थे। आग की एक चिंगारी ईंधन से मिलकर भीषण अग्नि उत्पन्न कर सकती है। उसी तरह भगवान ने नंद महाराज के घर में अपने बाल्यकाल से ही आरंभ करके इन सभी महान असुरों का वध किया। भगवान के बाल्यकाल की क्रीड़ा स्थली वृंदावन की भूमि आज भी है, और जो कोई भी इन स्थानों में जाता है वह वही दिव्य आनंद पाता है। यद्यपि भगवान हमारी अपूर्ण आँखों को सदेह दृष्टिगोचर नहीं होते, यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भगवान की लीला स्थली वृंदावन है, वो भगवान का वास्तविक ठिकाना है। भगवान ने कहा, वृंदावनम परित्यजम पादम एकम न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी बाहर नहीं जाता। तो जो आज भी जाते हैं वहाँ वृंदावन में, और जो शुद्ध हृदय के साथ जाते हैं, उन्हें अवश्य भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, मतलब वही दिव्य आनंद प्राप्त होता है। भले ही भगवान हमारी ना अपूर्ण आँखों से सदैव दृष्टिगोचर नहीं होते, दिखते नहीं हैं, लेकिन वह आनंद का अनुभव अवश्य होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की इस भूमि को भगवान से अभिन्न बताया। वृंदा तद्धाम वृंदावनम, अर्थात जितना ही पवित्र भगवान है उतना ही उनका धाम है। अतएव महाप्रभु ने भगवान की इस भूमि को भगवान से अभिन्न बतलाया। अतएव भक्तों द्वारा यह पूजनीय है। इस उपदेश को चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, जो गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं, विशेष रूप से मानते हैं, क्योंकि यह भूमि भगवान से अभिन्न है। अतः उद्धव तथा विदुर जैसे भक्तों ने 5000 वर्ष पूर्व इन स्थानों का भ्रमण किया, जिससे वे दृश्य या अदृश्य भगवान से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सके। आज भी भगवान को हजारों भक्त भगवान के हजारों भक्त वृंदावन में इन पवित्र स्थानों में भ्रमण करते हैं, और इस तरह वे भगवत धाम जाने की तैयारी करते हैं। तो जिन भक्तों को भगवान अवसर प्रदान करते हैं, वो अवश्य वृंदावन जाने के लिए प्रेरित होते हैं और जाते हैं, वहाँ पर आनंद लूटते हैं। और जो नहीं जा पाते हैं, उनके भी हृदय में सदैव एक इच्छा लालसा होती है कि श्रीमती जी कृपया हमें वृंदावन धाम में वास दीजिए, और वहाँ पर जाकर शुद्ध भक्तों का दर्शन करना, वहाँ उनसे कथा श्रवण करना, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, ये बहुत हृदय के अंदर कृष्ण के प्रति आसक्ति को गाढ़ करने वाली है। इसलिए सदैव हृदय में इच्छा होनी चाहिए कि जिस समय मिले, अवकाश मिले, वृंदावन जाना चाहिए। आगे उद्धव जी कहते हैं ये भगवान की बाल लीलाएं केवल ब्रजवासियों के लिए ही सुलभ थी। भगवान कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, और बिल्कुल बच्चों के समान प्रतीत होते हैं। ये सौभाग्य केवल ब्रजवासियों को ही प्राप्त हुआ कि वो इन मधुर लीलाओं का आस्वादन कर सके। कौमारी दर्शयश्चेष्टां
प्रेक्षणीयं व्रजौकसां रुदनिव हसन्मुग्धा बालसिंहावलोकनः कौमारी दर्शयश्चेष्टां प्रेक्षणीयं व्रजौकसां रुदन्निव हसन्मुग्धा बालसिंहावलोकनः कौमारीं दर्शयश्चेष्टां। कौमारीं मतलब बचपन के लिए अपयुक्त, दर्शयन दिखाने के दिखलाते हुए, चेष्टां कार्यकलाप, प्रेक्षणीयां देखने के योग्य यानी दर्शनीय, व्रजौकसां वृंदावन के वासियों द्वारा, रुदन निव हसन मुग्ध रुदन चिल्लाते थे, इव सदृश्य हसन कभी हंसते थे, मुग्ध आश्चर्यचकित, बाल सिंह सिंह शावक और अवलोकन उसी तरह का दिखते हुए। अनुवाद, जब भगवान ने बालोचित कार्यों का प्रदर्शन किया तो वे एकमात्र वृंदावन वासियों के ही दृष्टिगोचर थे। वे शिशु की तरह कभी रोते तो कभी हंसते और ऐसा करते हुए वे सिंह के भी बच्चे के समान प्रतीत होते थे। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते, यदि कोई व्यक्ति भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहता है तो उसे नंद, उपनंद तथा वृंदावन के अन्य पितृवत निवासियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। बालक किसी वस्तु को पाने के लिए हट कर सकता है और उसे पाने के लिए कितना भी रो सकता है, जिससे सारे पड़ोस की शांति भंग हो सकती है, किंतु वांछित वस्तु के मिलते ही वह बालक तुरंत ही हंसने लगता है। ऐसा रोना तथा हंसना माता पिता तथा परिवार के गुरुजनों के लिए आनंददायक होता है। उसी तरह भगवान एक ही समय रोते तथा हंसते और अपने भक्त माता पिता को दिव्य आनंद रस का निमग्न कर देते। ये घटनाएं एकमात्र ब्रजवासियों द्वारा तथा नंद महाराज द्वारा आस्वाद्य हैं। ब्रह्मा या परमात्मा के निर्विशेषवादी पूजकों द्वारा नहीं। कभी कभी जब जंगल में कृष्ण पर असुर आक्रमण कर देते तो वे आश्चर्यचकित प्रतीत होते, किंतु वे उन पर सिंह के बच्चे के समान दृष्टि डालते और उनको मार डालते। उनके बचपन के संगी भी आश्चर्यचकित होते और जब वे घर लौटकर आते तो सारी कहानी अपने माता पिता से कह सुनाते, जिससे सारे लोग अपने कृष्ण के गुणों की सराहना करते। बालक कृष्ण मात्र अपने माता पिता नंद तथा यशोदा के ही नहीं थे, वे वृंदावन के समस्त वयोवृद्ध निवासियों के पुत्र थे और समस्त समवयस्क बालकों तथा बालिकाओं के मित्र थे। सारे लोग कृष्ण से प्रेम करते थे। वे पशुओं, गौओं, बछड़ों समेत सभी लोगों के प्राण आधार थे। उद्धव भगवान की लीलाओं को याद करते हुए बताते हैं कि भगवान कितना स्नेह करते थे सब ग्वालों से, सब गोपियों से और गायों बछड़ों के साथ, और इतनी आश्चर्यजनक लीलाएं करते थे भगवान। और इसके साथ साथ यहाँ पर यह बात समझने की है कि वो हर वक्त जब वो कृष्ण के साथ होते थे तो कृष्ण का ही ध्यान, कृष्ण की ही सेवा, कृष्ण की ही आज्ञा पालन, कृष्ण को ही प्रेम। और जब वो घर भी जाते थे तो भी उनको मुख में सिर्फ माता जी अपनी माता को बताते थे, अपने पिता, आज पता है कृष्ण किसको मारा, आज इतना बड़ा असुर आया था, वो इस ऐसे कभी क्या बन के आते थे असुर, कभी कोई घोड़ा बन के आते थे, कभी बकासुर जैसे वो बगुला बन के आते थे, इतना बड़ा बगुला बन के आया था एक असुर, फिर कृष्ण ने उसको ऐसे मारा, फिर कृष्ण, वही कथा जो आज हम कर रहे हैं वो उस समय आके फौरन अपने माता पिता को बताते थे और हर वक्त आपस में जब भी बात करते थे तो कृष्ण की ही वीरता की, कृष्ण की सुंदरता की बात करते थे। भगवान अपनी सुंदर मनोहारिणी लीला से सबको आनंदित करते थे और खेल खेल में सारे असुरों का वध कर लेते थे। और साथ में ही भगवान एक सुंदर कार्य करते थे और वो क्या थे आगे बताते हैं। स एव गोधनम लक्ष्म्या निकेतम सित गो वृषम चारयन्नुपगानोपान रणत्वेरुणरीरमत् स एवं गोधनम लक्ष्मा निकेतम सितगो वृषम चारयन्नुपगानोपान रणत्वेरुणरीरमत् स एव गोधनम लक्ष्म्या स मनवः कृष्ण एव निश्चय ही गोधनम गौरूपी खजाना लक्ष्म्या ऐश्वर्य से निकेतम अर्थात आगार सिद्ध गोवृष अर्थात सुंदर गौओं तथा बैल चारयन चराते हुए अनुगान अर्थात अनुयायियों को गोपान ग्वाल बालों को रणत बजती हुई वेणोदरीरणम वेणोत मतलब वंशी अरिरमत मतलब उल्लसित किया करते थे। अनुवाद अत्यंत सुंदर गाय बैलों को चराते हुए समस्त ऐश्वर्य तथा संपत्ति के आगार भगवान अपनी वंशी बजाया करते। इस तरह वे अपने श्रद्धावान अनुयायी ग्वाल बालों को प्रफुल्लित करते थे। यहाँ पर भगवान के वंशी वादन के विषय में बताते हैं कि जब भी भगवान बांसुरी बजाते थे तो जितने भी ग्वाल बाल हैं वो प्रफुल्लित हो जाते थे। उनकी बांसुरी का स्वर इतना मीठा था कि प्रत्येक चराचर प्राणी जो है उनको उनके मन को मोह लेता था, उनको आनंदित करता था। श्री प्रभुपाद की श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जब भगवान 6-7 वर्ष के हुए तो उन्हें चराहगाहों में गौओं तथा बैलों की देखभाल करने का काम सौंपा गया था। वे ऐसे संपन्न भूमिधर के पुत्र थे जिसके पास हजारों गवें थी। वैदिक अर्थशास्त्र के अनुसार मनुष्य अपने अन्न भंडार तथा गौओं के बल पर धनी व्यक्ति माना जाता है। केवल इन्हीं दो वस्तुओं गौओं तथा अन्न से मनुष्य अपनी खाद्य समस्या हल कर सकता है। मानव समाज को अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए केवल पर्याप्त अन्न तथा पर्याप्त गौओं की आवश्यकता होती है। इन दोनों वस्तुओं के अतिरिक्त बाकी सारी वस्तुएं कृत्रिम आवश्यकताएं हैं जिन्हें मनुष्य ने अपने मूल्यवान जीवन का हनन करने तथा व्यर्थ की वस्तुओं में अपना समय नष्ट करने के लिए उत्पन्न किया है। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि वो त्रिलोकी के नाथ थे, भगवान थे। वो सोच सकते थे कि भाई मुझे ना बहुत टेक्निकल चीज़ें चाहिए, ऐसा महल हो मेरा जहाँ पर एसी लगा हुआ हो, स्विमिंग पूल हो वहाँ पर, है ना, या फिर जिम होना चाहिए, वहाँ पर स्नोकर खेलने की जगह होनी चाहिए, ड्राइविंग करने के लिए कार होना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सब क्या है जानते हैं, ये सब जो वस्तुएं हैं वो अपने अमूल्यवान जीवन का हनन करने तथा व्यर्थ की वस्तुओं में अपना समय नष्ट करने के लिए ये सब वस्तुएं हैं। वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य इस भौतिक जगत में लग्जरियस लाइफ नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, इतना पर्याप्त जीना कि उस जीवन में हम ऐसा कार्य कर सकें, ऐसी भक्ति कर सकें कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। और जब भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी तो यहाँ का जो न्यूनतम सुख है जिसके लिए हम अपनी भक्ति को त्यागते हैं, यही सोच कर ना कि अगर हम भक्ति करने बैठेंगे तो फिर ये सब लग्जरियस लाइफ नहीं मिलेगी, ये सबको त्यागना पड़ेगा। ये सुख तो कीड़े मकोड़ों को भी मिलता है हमारे घर में, जो कीड़े और चुंटियाँ और कॉकरोच है ना, उनको भी वो सुख मिल रहा है जो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन वो आनंद जो भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में है, वो तो उसका तो कोई कंपेयर नहीं है। उस और हम क्या कर रहे हैं जानते हैं, हम उस आनंद को छोड़कर हम इस भौतिक जगत के आनंद के लिए उस आनंद को प्राप्त करने का जो अवसर मिला है उसको नष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें समझाते हुए कह रहे हैं कि मानव समाज को अपनी आर्थिक समस्याओं के हल करने के लिए केवल पर्याप्त अन्न तथा पर्याप्त गौवों की आवश्यकता है। अन्न पर्याप्त मात्रा में हो और गौवें जैसे दूध मिलता जाए, और ये दो चीज़ें अगर हमारे पास है तो इन दोनों वस्तुओं के अतिरिक्त बाकी सारी वस्तुएं कृत्रिम आवश्यकताएं हैं, जिन्हें मनुष्य ने अपने मूल्यवान जीवन का हनन करने के लिए, व्यर्थ की वस्तुओं में अपना समय नष्ट करने के लिए उत्पन्न किया है। मानव समाज के शिक्षक रूप में भगवान कृष्ण ने अपने कार्यों से यह दिखलाया है कि वैश्यों को गौवों तथा बैल पालने चाहिए और मूल्यवान पशुओं को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। श्रीमती के नियमों के अनुसार गाय मनुष्य जाति की माता और बैल पिता है। गाय माता है क्योंकि मनुष्य जिस तरह माता के स्तन का दूध पीता है, मानव समाज गाय का दूध पीता है, इसी तरह बैल मानव समाज का पिता है। क्योंकि पिता बच्चों के लिए उसी प्रकार कमाता है जिस तरह की बैल अन्न उत्पन्न करने के लिए भूमि जोतता है। मानव समाज पिता तथा माता का वध करके जीवन आत्मा का हनन कर देगा। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि सुंदर गौओं तथा बैलों विभिन्न चौकड़ीदार रंगों वाले थे, लाल, काले, हरे, पीले, धूसर इत्यादि। उनके रंगों तथा स्वस्थ हंसमुख चेहरों के कारण वातावरण उल्लासपूर्ण था। इन सबसे भी अधिक था भगवान अपनी सुविख्यात वंशी बजाया करते। उनकी वंशी की ध्वनि उनके मित्रों को दिव्य आनंद प्रदान करती, जिससे वे निर्विशेषवादियों द्वारा बहु प्रशंसित ब्रह्मानंद की बातें बोल जाते थे। जैसा कि सुखदेव गोस्वामी बतलाएंगे, ये ग्वाल बाल ऐसे जीव थे जिन्होंने ढेरों पुण्य कर्म संचित किए थे और जो भगवान के साथ आनंद ले रहे थे तथा उनकी दिव्य वंशी सुन रहे थे। ब्रह्म संहिता 5.13 में ब्रह्मा जी उनके द्वारा दिव्य वंशी बजाने की पुष्टि करते हैं। वे कहते हैं, वेणुं क्वणन्तं अरविन्द दलायताक्षं भर्हवतं समासितं बुधसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनिया विशेषाशुभं गोविन्दं आदिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपनी दिव्य वंशी बजाते हैं। उनकी आंखें कमल के फूलों जैसी हैं, वे मोर पंखों से सुशोभित हैं और उनके शरीर का रंग नवीन श्यामल बादल के सदृश है। उनका शारीरिक स्वरूप करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर है। ये भगवान के विशिष्ट गुण हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ये भगवान हैं, ये सर्वशक्तिमान हैं, षडेश्वरियों से युक्त हैं और अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। कर क्या रहे हैं वो? छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ सुंदर सुंदर गौओं और बैलों को चराने के लिए लेके जाते हैं, उनके दूध का माखन का पान करते हैं और बांसुरी बजाते हैं, सबको कृतार्थ करते हैं। इसे कहते हैं आनंद। हम आज आनंद की परिभाषा भूल गए हैं। भौतिक वस्तुओं में सुख ढूंढने का झूठा प्रयास जो कि जीवन भर हमको असफलता प्रदान करता है। कभी भी इन भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों में हमें आनंद प्राप्त होगा नहीं। ये कृष्ण की लीला है। ये केवल श्रवण नहीं है, ये केवल शब्द नहीं है, ये साक्षात कृष्ण का सानिध्य है। ये श्रीमद् भागवतम कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। कृष्ण के साथ मिलने का एक सौभाग्य भगवान ने दिया है कि अगर मुझसे आज भी हम जब इन लीलाओं को श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमको ऐसा ही उसके अंदर आनंद का अनुभव करना है जैसा कि वो ग्वाल बाल कर रहे हैं उनकी बांसुरी सुनकर, उनके हंसते मुस्कुराते मनोहर मधुरतम मुखमंडल को देखकर, उनके कार्यकलापों को श्रवण करके हम आज भी आनंद विभोर हो सकते हैं यदि पूरी श्रद्धा के साथ कि ये कृष्ण के कार्यकलाप कृष्ण से भिन्न नहीं है, भगवान के नाम गुण और लीला में कोई अंतर नहीं, साक्षात भगवान ही है। और आगे उद्धव जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। प्रयुक्तान भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलया व्यनुदत्तांस्तान् बालः क्रीडनकानिव। प्रयुक्तान भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलया व्यनुदत्तांस्तान् बालः क्रीडनकायिनिव। प्रयुक्तान भोजराजेन, प्रयुक्तान अर्थात लगाए गए, भोजराज अर्थात कंस ने, मायिनः बड़े बड़े जादूगर मायावी, कामरूपिण अर्थात इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, लीलया व्ययुदत्तांस्तान, लीलया अर्थात लीलाओं के द्वारा व्ययुदत्त मार डाला तान उन सबको, तान यानी जैसे ही वे निकट आए, बाल क्रीडनकानया, बाल यानी बालक क्रीडनकान अर्थात खिलौनों इवदर्शु। अनुवाद, भोज के राजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बड़े बड़े जादूगरों को लगा रखा था जो कैसा भी रूप धारण कर सकते थे, किंतु अपनी लीलाओं के दौरान भगवान ने उन सबों को उतनी ही आसानी से मार डाला। कैसे? बालह क्रीडन कानिव, जिस तरह कोई बालक खिलौनों को तोड़ डालता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नास्तिक कंस कृष्ण को जन्मते ही मार डालना चाहता था, वह ऐसा करने में विफल रहा, किंतु बाद में उसे यह जानकारी मिली कि कृष्ण वृंदावन में नंद महाराज के घर पे रह रहे हैं। अतएव उसने कई जादूगर लगाए जो अद्भुत कार्य कर सकते थे और इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे। वे सभी बालक कृष्ण भगवान कृष्ण के समक्ष विविध रूपों में यथा अघासुर, बकासुर, पूतना, शकट, तृणावर, धैनुक तथा गंधर्व रूपों में प्रकट हुए और हर बार उन्होंने भगवान को मार डालने का प्रयास किया, किंतु भगवान ने एक एक करके सबों को इस तरह मार डाला मानो वे खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। बच्चे सिंह, हाथी, बालू तथा अन्य ऐसे ही विविध खिलौनों से खेलते हैं और खेलते खेलते वे उनको तोड़ डालते हैं। शक्तिशाली भगवान के सामने कोई भी शक्तिशाली जीव खेलते हुए बच्चे के हाथों में सिंह के खिलौने के समान होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह ईश्वर से बढ़कर नहीं हो सकता। अतएव कोई भी व्यक्ति ना तो उनके समान हो सकता है, ना उनसे बढ़कर हो सकता है, ना ही किसी भी प्रकार के प्रयत्न से कोई व्यक्ति ईश्वर की समता प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दिखने में संसार में ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़े जादूगर हैं, बहुत बड़े मायावी हैं जो कि माया से अपना स्वरूप बदल सकते, तो कंस भी ऐसे ही लोगों को भेजते थे और उनको लगता था ये साधारण सा बच्चा है, वो तो एक ही क्षण में मार डालेंगे इसको, परंतु भगवान तो भले एक दिन के हों, भले छोटे से बच्चे की तरह कार्यकलाप करते हैं, परंतु वो भगवान है और भगवान के समान कोई नहीं हो सकता। तो भगवान से बढ़कर होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, चाहे देखने में कितने ही बड़े बड़े जादूगर हों, मायावी हों, लेकिन भगवान उनको उसी तरह से मार डालते थे जैसे छोटे बच्चे खिलौनों को खेलते 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 आकर उनको तोड़ डालते हैं। उसी तरह से वो भी चाहे अगासुर, बकासुर, तृणावत, उत्कट, जो भी आता था भगवान खेल खेल में, भगवान ने तो कभी अस्त्र भी ना उठाया अपने हाथ में। वृंदावन में इतने सारे असुरों का वध किया और खेलते खेलते पूतना को दूध पिलाते पिलाते मार डाला, और बकासुर को तो खेलते खेलते अभी तृणावर्त आया और हवा में उड़ते उड़ते मार डाला। मतलब ऐसे भगवान उनका उद्धार करते थे कि सब आश्चर्यजनक हो जाते थे। आगे श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि ज्ञान, योग तथा भक्ति, ये आध्यात्मिक साक्षात्कार की तीन मान्य विधियां हैं। ऐसी विधियों की पूर्णता मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों में जीवन के वांछित गंतव्य तक पहुंचा सकती है। कौन कौन सी विधियां हैं? ज्ञान योग, योग साधना तथा भक्ति। ये ऐसी विधियाँ हैं जिससे हम वांछित गंतव्य यानी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि ऐसे प्रयत्नों से मनुष्य भगवान की ही जैसी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। भगवान प्रत्येक अवस्था में भगवान रहते हैं। जब वे यशोदा माई की गोद में शिशु की तरह या जब वे ग्वाल बाल के रूप में अपने दिव्य मित्रों के साथ खेलते रहे थे, तो वे अपने षडेश्वरियों में किंचित कमी किए बिना ईश्वर बने रहे। इस तरह वे सदैव अद्वैय हैं कि वो उनके जैसा कोई नहीं, वो अद्वैय हैं। चाहे जीव कितना ही योग साधना कर ले, चाहे कितनी ही भक्ति कर ले, चाहे कितना ही ज्ञान अर्जित कर दे, वो ना भगवान के सम हो सकता है और भगवान से बड़ा होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आगे उद्धव जी कहते हैं, विपन्नान विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम उत्थाप्यापाय यत्काव तत्तोयं प्रकृतिस्थितं विपन्नान विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम उत्थाप्यापाय यत्काव तत्तोयं प्रकृतिस्थितं। यहाँ पर विदुर जी कहते हैं, विपन्नान विष पाने ना, विपन्नान मतलब महान विपत्ताओं में परेशान, विष पाने ना विष पीने से, निगृह दमन करके, बुजग आदिपम यानी सर्पों के जो मुखिया हैं उनको, अब सर्पों के जो मुखिया हैं कालिया नाग, वो अपना विष लेकर कहाँ पर आ गए थे? यमुना नदी में आ गए थे। और उत्थाप्याप पाया यत्कावत, उत्थाप्य बाहर निकाल कर, अपाययत यानी पिलाया, किसको? गावों को। गावस तत्तोयम, गावस यानी गावों को, तत्व यानी उस, तोयम मना जल को, प्रकृति स्थितम के स्वाभाविक स्थितम मना स्थिति में। तो भगवान ने वो जल जो कि जहरीला कर दिया था कालिया ने, कालिया को वहां से जाकर निकाल दिया और वही जल इतना स्वच्छ हो गया कि पुनः पीने के योग्य हो गया। अनुवाद देखिए, वृंदावन के निवासी घोर विपत्ति के कारण परेशान थे, क्योंकि यमुना के कुछ अंश का जल सर्पों के प्रमुख कालिय द्वारा विषाक्त कर दिया जा चुका था। भगवान ने सर्पराज को जल के भीतर से प्रतारित किया और उसे दूर खुदेड़ दिया। फिर नदी से बाहर आकर उन्होंने गौओं को जल पिलाया तथा यह सिद्ध किया कि वह जल पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में है। तो यहाँ इस तरह से भगवान ने कालिया का दमन किया, और ये सब लीलाएं विस्तार से हम 10वें स्कंद में पढ़ेंगे, और इन सब लीलाओं के पीछे बहुत बड़े बड़े इतिहास हैं, बहुत भगवान के बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं इनके अंदर। लेकिन अभी हम उद्धव जी के द्वारा इन लीलाओं का केवल रसपान कर रहे हैं। भगवान की अत्यंत ही सुंदर लीला जिसमें उन्होंने इंद्र का मान मर्दन किया, उसके विषय में बताते हैं। उद्धव जी कहते हैं, आया जयत गोसवेना गोपराजं द्विजोत्तमय वितस्य चारुभारस्य चिकीर्षन् सत्वयं विभु अयाजयत् गोसवेना गोपराजं द्विजोत्तमय वितस्य चारुभारस्य चिकीर्षन् सत्वयं विभु अयाजयत् गोसवेना। अयाजयत मतलब संपन्न की कराया, गोसवेना अर्थात गौओं की पूजा द्वारा, गोप राजम ग्वालों के राजा, द्विजोत्तमय अर्थात विद्वान ब्राह्मणों द्वारा, वित्तस्य चारुभारस्य यानी वित्तस यानी संपन्न, च मना भी उरुभार यानी महान ऐश्वर्य, चिकीर्षन सद्वयम विभु, चिकीर्षन अर्थात कार्य करने की इच्छा से, सद्वयन अर्थात उचित उपयोग विभु, अनुवाद भगवान कृष्ण महाराज नंद की ऐश्वर्यशाली आर्थिक शक्ति का उपयोग गवों की पूजा के लिए कराना चाहते थे और वे स्वर्ग के राजा इंद्र के भी को भी पाठ पढ़ाना चाह रहे थे। अतः उन्होंने अपने पिता को सलाह दी कि वे विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से गौ अर्थात गो अर्थात चराग्रह तथा गौओं की पूजा कराएं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी बताएं चूंकि भगवान सबों के शिक्षक हैं अतः उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी शिक्षा दी। नंद महाराज एक संपन्न भूमिधर तथा अनेक गवों के स्वामी थे और प्रथा के अनुसार वे प्रतिवर्ष स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा बड़ी ही सज्जदज के साथ किया करते थे। वैदिक वांग्मय में भी जनता द्वारा देवताओं की इस पूजा की सलाह दी गई है। शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव पर्जन्यात् यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कि अन्न से ही जीवों का गुजारा होगा और अन्न बारिश से होता है और बारिश जो है वो यज्ञ करने से होती है। तो यज्ञ जो है वो करना बहुत आवश्यक है और इस कलयुग का जो यज्ञ है वो क्या है, भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो प्रत्येक जीव को अपना ये जप यज्ञ अवश्य करना चाहिए, संपन्न करना चाहिए। उसी से जीव सुरक्षित रह सकता है, उसी से जीव संतुष्ट रहता है। इसीलिए यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक वांग्मय में भी जनता द्वारा देवताओं की इस पूजा की सलाह दी गई है जिससे लोग भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करें। देवता तो भगवान के दास हैं जिन्हें ब्रह्मांड विषयक विविध कार्यों का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया गया है। इसलिए वैदिक शास्त्रों में सलाह दी गई है कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य यज्ञ संपन्न करें, किंतु जो व्यक्ति परमेश्वर की भक्ति करता है उसे देवताओं को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्य जनों द्वारा देवताओं की पूजा परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार करने की एक व्यवस्था है, किंतु ऐसा करना आवश्यक नहीं है। ऐसा तुष्टिकरण सामान्यता भौतिक लाभों के लिए ही किया जाता है, जैसे कि इस ग्रंथ के द्वितीय स्कंध में हम पहले ही कह चुके हैं। जो व्यक्ति भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार कर लेता है उसे गौण देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभी अल्पज्ञ जीवों द्वारा पूजा तथा आराधना किए जाने से देवता गर्वित होते हैं और वे भगवान की श्रेष्ठता को भूल जाते हैं। ऐसी ही घटना तब घटी जब भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड में उपस्थित थे, अतः भगवान ने स्वर्ग के राजा इंद्र को पाठ सिखाना चाहा। उन्होंने नंद महाराज से कहा कि वे इंद्र को अर्पित किया जाने वाला यज्ञ बंद कर दें और गौओं तथा गोवर्धन पर्वत पर स्थित चरागाहों की पूजा करके धन का समुचित उपयोग करें। इस कार्य से भगवान कृष्ण ने मानव समाज को शिक्षा दी, जैसा कि भगवत गीता में भी उन्होंने उपदेश किया है कि मनुष्य को अपने समस्त कर्मों तथा उनके फलों द्वारा ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए, जिससे वांछित सफलता प्राप्त हो सकेगी। वैश्यों को वैश्य रूप में सलाह दी गई है कि वे गौओं तथा उनके चरागाहों की कृषि शोग्य में भूमि को संरक्षण प्रदान करें और गाढ़ी कमाई को व्यर्थ ना फूंकें। इससे भगवान तुष्ट होंगे। अपने व्यवसायिक कर्तव्य की पूर्णता, चाहे वह कर्तव्य अपने प्रति, अपनी जाति के प्रति या अपने राष्ट्र के प्रति हो, भगवान की तुष्टि को कोटि से आंकी जाती है। श्रील प्रभुपाद की वेदों में जो यज्ञ विधि बताई गई है, वो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा तुष्टिकरण सामान्यतः भौतिक लाभों के लिए किया जाता है। वो बस सांसारिक जो लाभ प्राप्त हों कि पुत्र मिल जाए, धन मिल जाए, सुंदरता मिल जाए, जैसा कि द्वितीय सिकंद में हमने पढ़ा कि देवताओं की पूजा करने से क्या प्राप्त होता है। लेकिन आगे जाके भगवान को ये शिक्षा देनी है कि यदि जन्म को भगवत धाम की प्राप्ति करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसके लिए उसको एक ही कार्य करना पड़ेगा, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रजा, अकेले कृष्ण की शरण में आना। और इसकी शुरुआत भगवान ने अपने घर से की। नंद महाराज देवताओं के राजा इंद्र की सेवा करते थे, इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, आप गौओं की पूजा कीजिए, आप गोवर्धन की पूजा कीजिए। और श्री प्रभुपाद जी बताते हैं वैश्यों को विशेष रूप से सलाह दी गई है कि गौओं तथा उनके चरागाहों की कृषि योग्य भूमि को संरक्षण प्रदान करें और गाढ़ी कमाई को व्यर्थ ना फूंके। इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। अपने व्यवसायिक कर्तव्य की पूर्णता, चाहे वह कर्तव्य अपने प्रति, अपनी जाति के प्रति या अपने राष्ट्र के प्रति हो, भगवान की तुष्टि की कोटि से आंकी जाती है। कि अपना कोई भी कर्तव्य अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हो तो उसे भगवान संतुष्ट होता है। आगे विदुर जी को उद्धव जी बताते हैं, वर्षतीन्द्र व्रज को पात भग्नमाने तिविहिवलः गोत्र लीला तत्र प्रेण त्रातो भद्रानुग्रहणता वर्षतीन्द्रे व्रज को पात भवग्ना मनतो भवग्ना भग्नमाने तविह्वलः गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुग्रहणता के वर्षति इंद्र कोपत। वर्षति अर्थात जब इंद्र ने देखा कि मेरे हिस्से की पूजा वो गोवर्धन पर्वत की करवा रहा है, तो वर्षति बहुत बरसात इंद्र के द्वारा बहुत बहुत बरसात बरसाई गई। व्रज गौओं की भूमि यानी वृंदावन में, कोपत भग्न माने यानी अपमानित उसने अपने आप को, अपना समझा कि ये तो मेरा बहुत बड़ा अपमान है, अपमान से क्रुद्ध हो गए, कोपात बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हो गए, अति विह्वला अत्यधिक विह्वल यानी विचलित हो गए। गोत्र लीला तपत्रेण गोत्र अर्थात गायों के लिए पर्वत, गोत्र यानी पर्वत, लीला आतपत्रेण छाते के लीला द्वारा, त्रातो यानी बचा लिया गए, भद्र हे सौम्य अनुग्रहात कृपालु भगवान कृष्ण। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं तो हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी इस लीला से भगवान ये बता रहे हैं कि तुम जब मेरी शरण में आ जाओगे तो हर तरह के, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली हो, उससे बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। इसीलिए जब भगवान की आज्ञा के अनुसार सब गोप ग्वालों ने इंद्र की बजाय गोवर्धन की पूजा की तो क्या हुआ, आगे कहते हैं, हे भद्र विदुर, अपमानित होने से राजा इंद्र ने वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा की। इस तरह गौओं की भूमि व्रज के निवासी बहुत ही व्याकुल हो उठे, किंतु दयालु भगवान कृष्ण ने अपने लीला छत्र गोवर्धन पर्वत से उन्हें संकट से उभार लिया। इस तरह अनेक अनेक लीलाएं करने के उपरांत भगवान ने वृंदावन को छोड़ने से पहले अपनी सुंदर रासलीला की उसके विषय में विदुर जी को उद्धव जी बता रहे हैं। शरच्छ शिखरये मृष्टम मानयन् रजनीमुखम गायन् कलपदम रेमे स्त्रीणां मण्डलमण्डन। शरच्छ शिखरये मृष्टम मानयन् रजनीमुखम गायन् कलपदम रेमे स्त्रीणां मण्डलमण्डन। शरत शशि करय, शरत यानी शरतकालीन, शशि अर्थात चंद्रमा की, करय अर्थात किरणों से, मृष्टम यानी चमकीली, मानयन सोचते हुए, रजनी मुखम रात के मुख, गायन गाते हुए, कलपदम मनोहर गीत, रेमे अर्थात विहार किया, स्त्रीणाम मंडल मंडन स्त्रीणाम स्त्रियों का मंडल मंडनम यानी स्त्रियों की सभा के मुख्य आकर्षण के रूप में। अनुवाद। ऋषि वर्ष की तृतीय ऋतु में भगवान ने स्त्रियों की सभा में मध्यवर्ती सौंदर्य के रूप में चांदनी से उजली हुई शरद की रात में अपने मनोहर गीतों से उन्हें आकर्षित करके उनके साथ विहार किया। श्रील प्रभुपाद की से, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, गौओं की भूमि वृंदावन छोड़ने के पूर्व भगवान ने अपना युवा सखियों अर्थात दिव्य गोपियों को अपनी रासलीला द्वारा आनंदित किया। यहाँ पर उद्धव ने भगवान के कार्यकलापों का वर्णन करना रोक दिया। ये कथा श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद के रास पंच अध्याय में आएगी। बहुत ही मनोहर भगवान की दिव्य लीलाएं हैं जिनको हम दशम स्कंद में बहुत ही विस्तार के साथ श्रवण करेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की तृतीय स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण का स्मरण नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।